జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రమాయికి శ్రీల ప్రభుపాదకీ జయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. తో ఆజ్ కే 2 సితంబర్ 2016 కే ప్రభాత్ జాగృతి మే पीवी दोषी हॉस्पिटल में आप सबका स्वागत है. आप सबका बहुत धन्यवाद है कि आप लोग भगवान का नाम जप करने के लिए सवेरे आए. जब तक मनुष्य जीवन भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होता है तब तक वो शून्य होता है. एक तरह से उसको कहते हैं निरर्थक. निरर्थक यानी उसका कोई मतलब नहीं होता है. हवाई जहाज़ को अगर हवा में नहीं उड़ाया जाए, ज़मीन पे ही चलाया जाए, तो हवाई जहाज़ का हवाई जहाज होना यूजलेस है. बोट को अगर बनाए और केवल ज़मीन पे रखे और उसको पानी पर नहीं चलाए तो बोट यूजलेस है. कोई उसका उपयोग नहीं, बोट होने का कोई अर्थ नहीं है. उसी प्रकार से मनुष्य बनने के बाद अगर कोई भगवान का नाम नहीं लेता है तो जीवत शव समान, जिंदा होते हुए भी मुर्दा घूम रहा है, ऐसा उसका मतलब है. जिस चीज़ के लिए उसको बनाया वही चीज़ नहीं कर रहा है तो मनुष्य का जीवन टोटल व्यर्थ है. तो फिर उसके बाद में मनुष्य जीवन में जो भी हम करते हैं, भगवान को छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़कर जो भी करते हैं, फिर उस प्रकार का जीवन प्राप्त होता है. मांसाहार करेंगे तो फिर शेर बनेंगे, चित्ता बनेंगे या तो कुत्ता बनेंगे. अगर बहुत यहाँ पर खाने पीने का को बहुत अच्छा लगता है तो खाने के लिए जीना चाहिए. ये ज़िंदगी ना मिले दोबारा. बहुत खाने का इच्छा होगा तो हाथी बनेंगे, बहुत खा सकते हो एक बार. बहुत सोने का मूड रहेगा तो फिर भालू बनेंगे, सोते रहेंगे. ये सब आपको लगता है कि हम लोग जोक अच्छा है, सुबह सुबह हंसने को मज़ा आ रहा है सुनने को, लेकिन ये अगर आपके जीवन में हुआ तो फिर आप नहीं हंसेंगे, हम हंसेंगे है ना. तो इसलिए भगवान के चरणों में ये जीवन समर्पित करना बहुत ज़रूरी है. आप लोग सोचते होंगे हम लोग तो यहाँ पर नर्सिंग पढ़ने आए हैं, क्या कनेक्शन भगवान का, क्या कनेक्शन किधर है? नर्सिंग पढ़ना है, जाना है घर पे, नौकरी करना है. चाहे नर्सिंग करते हो, डॉक्टरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, चाहे कोई औरत किसी के घर में जाके बर्तन मांझती है पेट पालने के लिए, ये सब के लिए भगवान का समर्पण जरूरी है. हाँ, ये मत समझना कि खाली पढ़े लिखों के लिए है, खाली ब्राह्मणों के लिए है, खाली इनके लिए है, जिनका पेट भर चुका है उनके लिए है, जिनका पेट नहीं भरा है उनके लिए नहीं है. ऐसा हम सोचते रहते हैं. तुमचं काय बाबा, तुम्ही तर काय शिकलेले माणसं आहे, तुम्ही करू शकता भक्ती विकती, आम्ही कसे करणार? ऐसा लोगों का आर्ग्युमेंट रहता है हमेशा. और इस पर विचार करने के लिए ही मनुष्य का जीवन दिया है. मनुष्य क्यों कहा गया उसको? उसका मन बहुत प्रगत है इसलिए मनुष्य कहा गया है. जिस शरीर में जीव को प्रगत मन प्राप्त होता है उसको मनुष्य कहा, मनुष्य या मानव कहते हैं. और मनु नाम के मनुष्यों के राजा हुए हैं. मनु वो सब मनुष्यों के राजा हैं. तो ये मन जो आपको इतना अच्छा मिला है विकसित, हाँ, उसको विचार करके अगर हम भगवान के जीवन, भगवान के लिए जीवन समर्पित नहीं करेंगे तो ये मन भी दिया आपको बेकार है. आपको कुत्ता बिल्ली का मन ही अच्छा है आपके लिए. कुत्ते के सामने आप कुछ ब्रेड रखो, बटर रखो, कोई अंडा रखो, भागवतम किताब रखो तो वो क्या करेगा? बाकी सब खा जाएगा, बाकी किताब छोड़ के चला जाएगा. क्योंकि उसको बस वो मन ही नहीं है समझने के लिए कि यह क्या चीज़ है मेरे सामने रखी गई है। वो सूंघेगा उसको, बोले खाने की चीज़ नहीं है, छोड़ देगा उसको। लेकिन आपके सामने अगर केक रखेंगे और भागवतम रखेंगे तो आप भागवतम को सत नमस्कार करेंगे, ऊपर रखेंगे और केक खा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भागवतम क्या चीज़ है। वो समझने की प्रवृत्ति, विचार, बुद्धि आपको दी है भगवान ने, तो ये सब आपके लिए है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सब कुत्ता बिल्लियों के लिए, पंछी के लिए नहीं है, ये विशेष रूप से हमारे लिए दिया गया है। और आप मन में सोच रहेंगे क्या टाइम पास है, उस पर सुनना पड़ता है वही वही। तो जीवन के अंत में रेडी रहिए, फिर आप जब यमदूत आएंगे आपको दंड देने के लिए, तब फिर किसी को पुकारना नहीं बचाओ बचाओ करके, वहाँ पर कोई बचाने को आता नहीं, सॉरी सर, कोई सायरन बजता नहीं उधर, कोई एम्बुलेंस नहीं आती है, बचाओ, हमारे पुलिस को फ़ोन करेंगे 1100 तो कोई नहीं आएगा उधर, पहुँच नहीं सकता है। तो सत्य जो है वो बदलता नहीं है, सत्य वैसे ही रहता है, अगर आप उसको मानो नहीं मानो, उसको ट्विस्ट करो, उसको कुछ और कुछ में गड़बड़ करो, लेकिन सत्य जो है वो सत्य रहता है। और भगवान के दरबार में, जब यमराज के दरबार में जब न्याय होता है तो वो सत्य के आधार पे होता है, उसमें कोई मैनिपुलेशन, कोई वकालत, कोई वकील, कोई लॉयर, कोई एडवोकेट का वहाँ पर काम नहीं होता है। फिर उस समय आप पछताएंगे, अरे बाप रे, उधर मौका था उस समय कुछ करने का, तब सुना नहीं, तब टाइम पास के रूप में लिया उसको। और अभी देखो, अभी क्या कर सकते हैं, अभी 1 घंटे में एग्जाम है, अभी क्या करें। पहले टीचर ने कितना बोला था, पढ़ो पढ़ो, ये नोट्स लो, ये क्वेश्चन आएंगे, इसको तो पढ़ो कम से कम, तो अच्छा पास तो हो जाओगे। हमने सारा चीज़ बाहर फेंक दिया, उसको कुछ ध्यान नहीं दिया। अभी 1 घंटे में एग्जाम है, अभी क्या कर सकते, टीचर भी क्या कर सकते, क्वेश्चन भी पेपर आप फूट गया ना पूरा आपके सामने, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, क्या लिखेंगे आप उसको। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर फूटने के बाद में गोल्ड मेडल मिलता है, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, उस फूटे हुए क्वेश्चन को लिखने के लिए भी। इसलिए हम सबको तारने के लिए संत लोग आते हैं और याद करते हैं, जीव जागो गौरा चांद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ बाया विशाची पिशाचिया खोले, उठो उठो सब लोग माया के गोद में सोए हुए, उठ जाओ, ये पिशाचिनी जो है आपको अपने गोद में रखी हुई है, उठो जागृत हो जाओ और भगवान का नाम लो। बाकी सब करो, करते रहो, पढ़ाई करो, घर को गृहस्थ चलाओ, बच्चों को पति पत्नी को संभालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको नहीं भूलना है। इसमें से 100 लोग बैठे होंगे तो कुछ कुछ परसेंट के ऊपर आप उसको स्वीकार करेंगे। हाँ, आप बोलेंगे 100% मैं लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे ठीक है देख लेंगे शाम को एक बार आधा घंटा देख लेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जितना आप इसको गंभीरता से लेंगे उतना उसका लाभ मिलेगा, जितना पढ़ाई करेंगे उतना मार्क मिलेगा, है कि नहीं। जो दिन रात पढ़ाई करता है वो नंबर 1 में आता है डिस्टिंक्शन में, जो टाइम पास पढ़ाई करता है वो 35% 40% में। आपका परसेंट कितना है पासिंग? 50% ना, 35% है, तो 50-51 में आप निकल जाएगा, मतलब काठा और पास है ना। सो इसमें भी यही बात है, जैसे कि वो शेतकरी होता है ना, वो अपने बहुत सारे बीज ऐसे फेंकता है खेत में, सब जगह धान नहीं आता है, जहाँ पर जमीन उपजाऊ है अच्छी तरह से, उसका जल भी उसको मिल रहा है, उसका मशागत भी किया हुआ है, उधर आपको बड़े बड़े ऐसे मिलेंगे। और कुछ कुछ जगह पे बोलते हैं ना खुरटी छोड़ पा, ऐसे धान लान थोड़ा थोड़ा जस्ट उधर आता है ना, गाँव में देखा ना आपने, तो बीज में तो शक्ति है पेड़ देने की, लेकिन जमीन में नहीं है उसको देने की। तो बीज गिरने पर भी उतना बढ़िया पेड़ नहीं आता है, इतने बढ़िया फल नहीं आ सकते उसके अंदर। उसी तरह से संत लोग तो बीज फेंक रहे हैं सब ऐसे, उधर भद्रा प्रिया ने झेल लिया उसको तो वहाँ पर अच्छा पेड़ आएगा, उधर छोड़ दिया क्या तो उधर नहीं आएगा। समझे आपको? तो इसलिए अपने हृदय को तैयार रखो, मशागत करके रेडी रखो उसको, जब भी भगवान की कृपा होगी ले लो उसको, तो फिर वो भक्ति लता बीज जो है ना, भक्ति लता मतलब भक्ति के वेली का जो बीज है, तो उसका अच्छा पेड़ आएगा मजबूत एकदम, और वो छाया देगा, भगवान की कृपा की छाया देगा। ऐसे ही भगवान की कृपा की छाया है वो कौन है? वही राधा रानी। राधा रानी जो है वो भगवान की वो कृपा है, जिसके वजह से हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। अगर राधा रानी हमारे जीवन में नहीं होती तो भगवान को यहाँ पर आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आते ही नहीं यहाँ पर। लेकिन वो राधा रानी जो है माँ की तरह है, वो अपने बालक पर बहुत प्रेम करती है। अभी देखो आपके घर में अगर समझो कोई भाई है, समझो वो सिगरेट पीता है और वो पिताजी के साथ झगड़ा करता है, तो पिताजी एक बार को लात मार के घर भगा देते हैं, बाहर भगा देते हैं, गेट आउट, इधर नहीं रहना आपको मेरे घर पे, बहुत बदमाश हो तुम। तो ज़्यादा निकल के वो, फिर ज़्यादा कौन रोता है घर पे? हाँ माँ रोती है ना ज़्यादा, पिताजी बाद में रोते हैं अकेले में, लेकिन ज़्यादा कौन रोती है दिन भर? माँ रोती है, क्योंकि माँ का हृदय करुणा से भरा होता है। वो कितना भी लड़का गंदा है, पिताजी भी ऐसे ही है, प्रेम करते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन रोता है? माँ रोती है, और बहन भी रो सकती है, हाँ हृदय बहुत कोमल होता है। तो वैसे जब हम सब लोग यहाँ पर दुख भोग रहे हैं, कितने लोग मानते हैं कि हम दुख भोग रहे हैं यहाँ पर? नहीं, बाकी लोगों को लगता है बहुत सुखी है, कांग्रेचुलेशंस। जो लोग समझते हैं कि यहाँ पर सुखी है, बेस्ट ऑफ लक, हमारी शुभकामना आपके साथ है, हरे कृष्णा। लेकिन जिनको लगता है कि आप दुख भोग रहे हो, वो हकीकत है। हाउ आर यू ऑन द फोन पूछेंगे, वेरी नाइस, फाइन, गुड, वेरी नाइस, आई एम गुड, ऐसा बोलते हैं आजकल। लेकिन हकीकत में सब लोग दुखी हैं यहाँ पर। हाँ भाई, मैं सुबह उठा, अभी सोच रहा हूँ कब कपड़ा पहनूँ, क्योंकि इतना पसीना आ रहा है, मैं कभी पहनूँ, बाद में एंड में पहनना पड़ा, वो आते आते पूरा कंप्लीट भीग गया वो। मतलब कब ये गर्मी ख़त्म होगी, कब पसीना ख़त्म होगा, कब सुकून आएगा, कब दिमाग शांत हो जाएगा। फिर अभी बाहर निकला तो जोरदार वर्षा आएगी, मैं छतरी ना भूल गया, अरे बाप रे, अभी सब मेरा कार्ड वार्ड सब पेपर सब भूल गया, अभी सब भीग गया, ऐसा हो जाएगा। कुछ दिन बाद वृंदावन में कड़क ठंडी आएगी, ऐसे कि भाई बिस्तर में से 10 बजे निकलने को नहीं होगा आपको, फिर बुखार आएगा, फिर निमोनिया होगा, फिर सर्दी होगी, हाँ फिर बच्चे को बुखार आएगा, है ना, सब कुछ होता है ज़िंदगी में। तो ये दुख जो हमारा है, जो हम भगवान को भूल कर यहाँ पर तड़प रहे हैं उसके लिए, उसको देखकर राधा रानी को बड़ी दया आती है, बड़ी करुणामयी है वो, और वो भगवान को हमारे लिए कृपा करने को क्या कहते हैं, मजबूर करती नहीं है, मतलब आग्रह करती है, प्रेम से बताती है कि ये जीव हमारे भटके हुए हैं, कुछ करो भगवान इनके ऊपर, कब आएंगे हमारे गोद में, माया की गोद में तड़प रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आराम से सो रहे हैं, लेकिन माया उसको मार रही है। हाँ, निकटस्थ माया तरे झपट या धोरे, और फिर पीटती है अच्छी तरह से, छोड़ती नहीं किसी को। ये नहीं बोलते कि भक्ति विधान के नर्सिंग स्टूडेंट है, इनको पीटना नहीं चाहिए। भक्ति विधान के टीचर है, हाँ वार्डन है, उनको हाथ मत लगाओ। ऐसे नहीं होता है, भक्ति विधान का डायरेक्टर है, उनको हाथ मत लगाओ, ऐसे नहीं होता है। सबको पीटती है वो, जब तक वो भगवान के चरण में नहीं आते हैं, सबको पीटती है वो, प्रधानमंत्री को भी पीटती है, अमेरिका के अध्यक्ष को पीटती है, उसको भी घर में पता है आपको पति पत्नी के झगड़े चल रहे हैं, पेपर में आ रहा है सब जगह पर, जमती नहीं है, अमेरिका का अध्यक्ष है वो, उसकी वाइफ जो है उसका जमता नहीं उसके पति के साथ। हाँ बहुत सीरियस बात है ये, तो ये मत समझना कि उनके जीवन में ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, इतना बड़ी बड़ी गाड़ी में 50 गाड़ी लेके घूमते हैं, उनको क्या तकलीफ है, इतना अच्छा 50-50 आइटम रोज खाते हैं खाने में, एक एक चम्मच। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि सबको दुख है, और ये दुख जो है वो कोई इससे मुक्त नहीं है, और उस दुख को देखकर राधा रानी को दुख होता है, आपके दुख को हमारे दुख को देखकर, और फिर वो उतार लेते हैं कृष्ण के साथ, और कृष्ण को आपको कितना भी पुकारो शायद वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, सुनते जरूर है, लेकिन आपको इतना लगेगा कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन राधा रानी का नाम जब पुकारेंगे तो वो भाग के आएंगे, उनका नाम पुकारेंगे सुनेंगे अच्छी तरह से, आप पुकारते रहो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन राधा रानी का नाम पुकारेंगे तुरंत भाग के आएंगे आपके लिए। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार में दौड़े आएंगे, तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सब मिट जाएंगे, ऐसा है वो। उसका नाम पुकारते ही रा और धा, ये दो शब्द को पुकारते ही सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे कष्ट और सारे पीड़ा मिट जाती है, और उसके साथ ही जो सारे पीड़ा नाश करने वाले हैं वो तुम्हारे पीछे पीछे भाग के आते हैं। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, कौन मेरे प्रियतम का नाम पुकार रहा है ये सुनकर वो पीछे पीछे दौड़ के आएंगे। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे कौन है? राधा रानी। जब उनके प्रिय को पहले पुकारेंगे तो वो तुरंत देखेंगे आपकी ओर, है ना। अभी समझो हमारे डॉक्टर भरव भाई जा रहे हैं रस्ते से, कोई उधर से रस्ते में प्रजानंद 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 पुकार रहे हैं, तो वो डॉक्टर भरव को तो नहीं पुकार रहे ना, फिर भी वो देखेंगे कौन मेरे बुल लड़के को पुकार रहा है। पुकारेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आपके प्रिय को कोई पुकार रहा है, आपके घर के आदमी को कोई पुकार रहा है जो आपके साथ में नहीं है, कोई तो पराया आदमी पुकार रहा है, तो आपका नाम ना पुकारते हुए भी आप उसको देखेंगे क्योंकि वो आपका प्रिय है। उसी तरह से कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना है तो यह ट्रिक है, ट्रिक। वो उनकी प्रियतमा का नाम पुकारेंगे तो वो तुरंत सुनेंगे। भक्ति जो है ना, ये बहुत सरल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जो हृदय से करता है उसको ये सब रहस्य मालूम होता है, इसको रहस्य कहते हैं। लेकिन बाय द वे ये रहस्य सबके लिए खुला है। हम लोग क्या बताते हैं, बहुत सीक्रेट है, एकदम कॉन्फिडेंशियल है, किसको बताना नहीं है, लेकिन सबको पता है। वो पता है वो सिस्टर की यहाँ अभी 1 जुलाई को शादी है, किसी को बताना नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी कार्ड छपेंगे सब बताना है, लेकिन आपको बातें बता देता है, सबको मालूम है, खाली बोल रहे हैं कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल, लेकिन सबको पता है। उस तरह से ये सीक्रेट है निश्चित रूप से, लेकिन सबको पता है, ऐसा ये सीक्रेट है। तो ये राधा रानी का जन्म अभी अष्टमी को होगा, 9 तारीख को, सितंबर को राधा रानी का जन्म है। और वो भगवान से इतना प्रेम करती है कि जब भगवान ने यहाँ पर आने का तय किया तो वो कहेंगे, कहते कि एक तो मैं आऊँगी नहीं जब तक वृंदावन नहीं आता है पृथ्वी पर। तो भगवान ने कहा कि वृंदावन गोवर्धन जमुना को पहले भेज दिया हूँ मैं, आपको अच्छा लगता है उसके बिना आप रह सकती नहीं हो, इसलिए आप ये प्लानिंग करने के अंदर ही ये प्लानिंग हो गया ऑलरेडी कि आपको अच्छा लगने के लिए पहले से पृथ्वी पर भेज दिया है, गोलोक धाम से वृंदावन भेज दिया है। मेरे अवतार होने के पहले वृंदावन का अवतार हो गया, गोवर्धन पहुंच चुके हैं, यमुना जी भी वेट कर रही है। बोले फिर भी मेरी एक शर्त है, मैं किसी को नहीं देखूंगी, ना किसी को सुनूंगी, ना किसी को स्पर्श करूंगी, केवल आपको देखूंगी पहले, तब मैं आंखें खोलूंगी। इसलिए जब उनका जन्म हुआ तो वो बंद आंखें थी उनकी, और माता पिता सोच रहे, अरे इतनी सुंदर गोल्डन, इतनी चमकदार प्रकाशमान विद्युल्लता के समान, तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है, अनंत सूर्य जैसी प्रकाशित है वो, लेकिन अंधी कैसी है? अरे तो अंधी है, देखती नहीं, और कोई खिलौने का आवाज़ कर रहे तो लग रहा है कि सुन नहीं रही है वो, और वो बहरी भी है, अच्छा, और रो भी नहीं रही है, शायद गूंगी भी है, तो किसको अच्छा लगेगा? बहुत सुंदर जन्म हुआ है लड़की का घर पे, लेकिन वो लड़की अंधी भी है, गूंगी भी है और बहरी भी है, तो क्या उसका बर्थडे मनाए कि ना मनाए, यही प्रश्न है ना? क्या बताएंगे, अरे हमारी बेटी हैप्पी बर्थडे, लेकिन क्या करेंगे, वो अंधी और गूंगी और बहरी है, तो बड़ा परेशान हो गए वो। तो नारद मुनि ने उनको गाइडेंस दिया कि चिंता मत करना, एकदम धूमधाम से बर्थडे मनाना उसका, लेकिन कृष्ण बलराम को, यशोदा मई, नंद महाराज को बुलाना जरूर उसके अंदर, तो फिर देखो क्या होता है आगे, धूमधाम से। हाँ, एक तरह से देखो आप, एक गूंगी बेटी बहरी और बहरी और गूंगी और अंधी बेटी का बर्थडे मनाया जा रहा है, मतलब जन्मदिन मनाया जा रहा है, और सब लोग आ रहे हैं धूमधाम से, और बात करते 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 कृष्ण बलराम छोटे छोटे से ऐसे रेंगते हुए ना ऐसे चले जाते हैं अंदर, और यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, माला पहना रहे हैं, स्वीट दे रहे हैं, गुलाब जल डाल रहे हैं। तो उसमें से वो दो बालक जो है वो खेलते खेलते कृष्ण भगवान अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कृष्ण भगवान उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर पलना रखा है, कृष्ण भगवान के शरीर के दिव्य सुगंध से राधा को पता चलता है कि कृष्ण आ गए हैं, तो वो आंखें खोल लेती हैं। फिर कृष्ण रेंगते रेंगते वो पलने को पकड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, तो वो रोर से रोती है। तो पहली बार उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सब लोग अंदर भाग के आते हैं, तब पता चलता है कि नारद मुनि ने कैसा बताया था, क्या करना है, इसके पीछे राज ये था कि वो श्री कृष्ण के लिए वेट कर रही थी, जब वो आएंगे तब दर्शन करेंगे उनका, सबसे पहले उनको देखेंगे, क्योंकि आंखें किसके लिए भगवान ने बनाई है? हाँ, सुंदर स्त्री या पुरुष को बनाने के लिए नहीं बनाई है, आंखें भगवान को देखने के लिए बनाई है, उनका सौंदर्य को देखने के लिए बनाए, उनके सौंदर्य का अमृत रस आंखों से पीने के लिए बनाई है उसको, आंखों को। मुंह किसके लिए बनाया है? प्रजल्प करने के लिए नहीं बनाया है, मेंढक की तरह डराओ डराओ डराओ, वो क्या करता है, डराओ डराओ अपनी मादी को पुकारते रहते हो, टू एंजॉय। तो मुंह बनाया भगवान का नाम पुकारने के लिए, कान भगवान का नाम और भगवान का गुणगान सुनने के लिए बनाए हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है जो कान भगवान का नाम और गुणगान नहीं सुनते हैं वो सांप के बिल की तरह है, इसमें सांप रहता है, विषैला सांप, तो जीवन को नाश कर देता है। तो ये कान से अगर हम और कुछ सुनेंगे, जो जैसे कि किसी की टीका है, किसी के ऊपर निंदा कर रहे हैं, किसी की बदनामी कर रहे हैं, कोई गॉसिप कर रहे हैं, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, वो अगर सुनेंगे तो आप मौत को अपने गले लगा रहे हो बहुत जल्दी। जैसे जब भी वो बेडू डराव डराव करता है ना, तो उसको लगता है मादी आएगी फिर एंजॉय करेंगे, आता कौन है, सांप आता है। मतलब पुकार मादी को रहा है, सुन सांप रहा है और काटने को सांप आ रहा है, मादी के पहले सांप पहुंच जाता है, मृत्यु को ही बुला रहा है वो, क्योंकि वो गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने टंग का। तो आप जब अपने कानों का इस्तेमाल उनका गौरव सुनने के लिए करेंगे, मुख का इस्तेमाल उनके नाम को गुणगान करने करेंगे, आंखों का इस्तेमाल उनका सौंदर्य देखने के लिए करेंगे, तो आपका जीवन धन्य है। ये मशीन जो आपको दिया है ना, इसकी जो औजार है सब इसके मशीन के पार्ट धन्य है, क्योंकि सभी मशीन का पार्ट उनके लिए बनाए हैं। अम्बरीश महाराज कहते हैं ये पैरों का इस्तेमाल क्या करना है, मंदिर की ओर जाने के लिए, चर्च की ओर जाने के लिए, मस्जिद की ओर जाने के लिए, भगवान को मिलने के लिए, भगवान को पुकारने के लिए जो जगह है वहाँ जाने के लिए पैर का इस्तेमाल होना चाहिए, हाथों का इस्तेमाल उनकी सेवा करने के लिए होना चाहिए, हाथों का इस्तेमाल हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए होना चाहिए, मन का इस्तेमाल उनके विचार करने के लिए होना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल कैसे भगवान की भक्ति की जाए इस जीवन का समय का उपयोग करके, उसके बुद्धि का उपयोग होना चाहिए, तब आपका सारे औजार सारे जो ये इसके पार्ट्स है बॉडी के वो फिट है, एकदम परफेक्ट है। अगर वो नहीं है तो गड़बड़ है, फिर एंड में क्या होगा ना, कोई कोई कुछ नहीं कह सकता। आज हम लोग सब बैठ कर यहाँ पर कथा कर रहे हैं, समझो अभी कुछ हो गया, समझो यहाँ पर एक चूहा आ गया समझो फॉर एग्जांपल, तो उसको संभालने के लिए कुछ बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मृत्यु के समय पर कोई नहीं रहता है, अकेले आपको सामना करना है अपने संकट का, जो पहले सुना है, जो पहले कमाया है भक्ति भक्ति करके, वही आपके साथ रहेगा, बाकी कोई साथ में नहीं आएगा, आपके कृपा रहेगी आपके साथ में जो आपने पहले कमाई है, लेकिन साथ में कोई बोले मम्मी भी साथ में आ जाओ तो मम्मी नहीं आएगी उधर, अकेला आपका युद्ध आपको लड़ना है। जैसे एग्जाम हॉल में मम्मी आपको एकदम एग्जाम के दरवाजे के अंदर बेंच तक बिठा के जाएगी, लेकिन आपको साथ में बैठ के उसको क्वेश्चन लिखने में आंसर करने में मदद नहीं करेगी, वो घंटी बजेगी तो मम्मी को आउट करेंगे सब लोग, फिर आप और सुपरवाइजर और क्वेश्चन पेपर और जो होता है उसका आगे लीला वो सब जानते हैं। हाँ, कोई उल्टी करता है, कोई चक्कर आके गिर जाता है, कोई क्या होता है, कोई रोता है, क्या क्या करते हैं। तो राधा रानी का ये हमारे लिए उदाहरण है कि वो विश्व में आती है सब पर कृपा करने के लिए आती है, लेकिन सबसे पहले कृष्ण को देखती है, क्योंकि वो उसके इष्ट हैं, उसके बिना कोई उसके लिए कोई पर्याप्त किसी को देखने का उसको दिल नहीं है। फिर उसके बाद में कृपा करना आरंभ हो जाता है, एक मोर आता है तभी नहीं बाद में, वो कृष्ण को जाके पुकारता है, बहुत पुकारता है, अलग अलग नामों से पुकारता है, नंदगांव जाके, नो रिस्पॉन्स, मतलब क्या आउट ऑफ स्टेशन है क्या, मतलब मैं रॉन्ग टाइम पे गया पता नहीं, परेशान हो गया। फिर वो बरसाना आ गया जहाँ राधा रानी का गाँव है, और वहां पर राधा रानी को पुकारा तो तुरंत भाग के आई वो तुरंत, और मोर को गोद में लिया और पूछा क्या हुआ, मतलब नंदगांव गया था वो कन्हैया को पुकारने के लिए, वो नहीं आए, बहुत पुकारा, रो रो के पुकारा, बोला अच्छा कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आपको अभी एक सीक्रेट बताती हूँ कैसे उनको बुलाना है और कैसे वो भाग के आएंगे, देखो आप तो वापस नंदगांव जाओ और राधे राधे पुकारो, फिर देखो क्या होता है। तो राधा रानी का आशीर्वाद कृपा प्रेम प्राप्त करके वापस नंदगांव गया, वहां पर राधे और धे पूरा होने के पहले ही भाग के आए हो, तुरंत गोद में लिया उसको, इतना प्रेम दिया भगवान ने उसको। तो प्रेम से जब वो गदगद हो गया पूरा मोर जो है, उसके पंख झड़ने लगे, तो उस प्रेम की भावना में झड़ा हुआ पंख जो है भगवान ने उठाया और सर पे लगा दिया अपने, और आज भी सर पे लगाते हैं उसको। कई कहानियां हैं ऐसे, लेकिन ये एक कहानी है कि जो रो रो के पुकार के थक गया, उसने राधा रानी का नाम पुकारा तो भाग के आए हो, वो तुरंत दर्शन दिया। तो आप समझ लो इस बात को, हाँ, वो श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त किए बिना आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते हो, और उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, योगी लोग भी उसको पकड़ नहीं सकते हैं, अनेक जन्मों के ध्यान तपस्या करने के बाद भी उसको पकड़ नहीं सकते कोई। अरे उनके चरणों के नाखून से निकलने वाले अनगिनत जितने किरण हैं उसमें से एक किरण भी आपको नहीं दिखेगा, इतना तपस्या करने के बाद, त्याग तपस्या संन्यास सब कुछ छोड़ने के बाद, विरक्त होने के बाद भी आपको उनके चरणों से निकलने का एक किरण भी निकलेगा नहीं भगवान के, भगवान तो दूर रहे। वो कृष्ण जो है वो दुर्गम दुर्लभ श्री कृष्ण जो है वो राजा रानी की कृपा से आपको तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम के पुजारी है, और वो प्रेम जो है वो राजा रानी देती है, जिसके वजह से कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। तो राजा रानी का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके ही एजेंसी से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वो जब सिफारिश करती है किसी की तो श्री कृष्ण तुरंत उसको अपना बना लेते हैं, चाहे वो पतित हो कुछ भी हो। अश्वत्थामा जैसा व्यक्ति जो था, इतना पापी था वो, उसने क्या नहीं किया, उसने द्रौपदी के बालकों को सोते हुए मारा, उसने इतना भयंकर पाप किया, पहले भी पाप किया बाद में भी पाप किया, लेकिन ये पाप जब किया तो भगवान इतने क्रोधित हो गए, भगवान ने उसका मणि निकाल दिया, जो उसका शोभा था और उसका गौरव था उसको मणि को निकाल दिया, और शाप दिया कि तेरा जो मणि निकालने के बाद जो जख्म होगी वो बहते ही रहेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी, कितना भी ड्रेसिंग करो उसका, कोई भी दवा लगा दो बहते रहेगी, ऊपर से कितनी भी दवा लो दर्द कम नहीं होगा, इतना दर्द होगा कि आप तड़पोगे, बोले मरना अच्छा है लेकिन ये दर्द सहन नहीं कर सकता मैं। इतना भयंकर साप भगवान ने अपने मुख से दिया। अभी देखो जिसके पास में आपका उद्धार होना है वही आपको ऐसा साप दे रहे, तो आपको कहाँ जाएंगे आप, क्या चाह रहा है आपके लिए, कौन से सेशन में जाएंगे, हाई कोर्ट कहाँ जाएंगे आप, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको दंड दे दिया, अभी तड़पते रहोगे और मरोगे भी नहीं, ऐसा भयंकर साप भगवान ने आज तक किसी को दिया नहीं। और अश्वत्थामा तड़प रहा था दर्द के मारे, तकलीफ में रो रहा था, दुनिया पर भटका हो, ब्रह्मा देव के पास में गया, शिव जी के पास में गया, बोला थैंक यू वेरी मच, सॉरी सर हमारे पास आना नहीं, आपने जिसका अपराध किया है उसने शाप दिया है, उसकी पावर के ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी एक आइडिया आपको देते हैं। सब उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, लेकिन एक आइडिया दिया ब्रह्मा देव ने, प्लस बरसाने जाओ और वहाँ जाकर राधा रानी को पुकारो, और वो मान जाएगी तो शायद कुछ हो सकता है, वो सुप्रीम पावर है। तो ये हमारे अश्वत्थामा बरसाने गए हैं और वहाँ जाके रोए हैं राधा रानी का नाम लेते हुए, तो राधा रानी ने इतना भयंकर शाप जो दिया था वो भी माफ़ कर दिया उसका, तत्क्षण उसका जख्म भर गया, दर्द खत्म हो गया। राधा रानी ने कहा अब यहीं रहो, और ये मेरा वन जो है उसका नाम है पिपासा वन, उसकी रक्षा करो और यही भजन करो, क्योंकि मरोगे तो नहीं आप, आपको तो चिरंतन रहने का वरदान है। तो आज भी वहाँ पर अश्वत्थामा रहते हैं पिपासा वन में। इतना करुणा आज तक किसी ने किया है किसी के ऊपर, जिसको भगवान ने भी भयंकर शाप देके रिजेक्ट कर दिया है उसको भी सहारा राधा रानी ने दिया है। इसलिए हमको भी लगता है कि हम भी इतने पतित हैं, फिर भी अगर राधा रानी अगर अश्वत्थामा को भी वरदान दे सकती है तो हमारे लिए भी कुछ स्कोप है, कुछ चांस है बचने का, ऐसा सहारा है वो। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। तो वो राधा रानी का जन्मदिन 9 सितंबर को है, तो उसमें क्या करना है आपको, रो रो के उनको पुकारना है कि कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, आप हमारे पर कृपा करेंगे, आपके ग्रुप में हम रहेंगे तो आपके ग्रुप को सबसे पहले रिहा किया जाएगा, है ना। तो उसी तरह से ये सबसे दीन जो होता है, जैसे हमारे समझो अभी बोट डूब रही है तो सबसे पहले किसको बाहर निकालते हैं, बच्चों को निकालते हैं, बूढ़ों को निकालते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को निकालते हैं, उसके बाद जवानों को निकालते हैं, है ना। जो सबसे कमज़ोर हैं उस पर सबसे पहली कृपा होती है ना। जो बहुत लोग भूखे हैं, जो उधर बहुत अकाल पड़ गया है, कुछ खाना नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले बच्चों को खिलाते हैं, फिर बूढ़ों को खिलाते हैं, फिर प्रेग्नेंट लेडी को खिलाते हैं। जो सबसे दीन हैं, सबसे करुण अवस्था में, सबसे असहाय अवस्था में, उन पर सबसे पहली कृपा होती है। अभी आप तो असहाय तो नहीं, आपको माता पिता सब लोग घर पे, आप असहाय कैसे, असहाय यहाँ पे होना चाहिए हृदय में, कि सबका सहारा होते हुए भी अगर भगवान का सहारा नहीं है तो वो असहाय है, वो अंदर से अपने आप को महसूस करता है कि सब सुसहारे हैं मेरे, लेकिन सब सहारों को मैंने डूबते हुए देखा है। जब समय आता है तो कोई सहारा काम नहीं आता है, सब सहारे समय पर काम नहीं आते। मरने के समय पर क्या होता है, अरे बहुत पैसा बैंक में है, कोई फायदा है क्या उसका? अरे हमारा बहुत पुलिस कॉन्टैक्ट है, बहुत सारे पुलिस आ सकते हैं, क्या करेंगे पुलिस आके? हमारे बहुत डॉक्टर है, हमें हॉस्पिटल में डायरेक्टर था, बहुत डॉक्टर फ्रेंड है, तो लास्ट स्टेज में क्या कर सकते हैं आप? सब कुछ आपके पास है, वेंटिलेटर है, एड्रेनालिन है, आईसीयू है, मॉनिटर है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी आदमी मरता है ना उधर कि नहीं मरता है? तो लास्ट स्टेज में परिवार के लोग हैं, पैसा है, धन है, कॉन्टैक्ट है, पावर है, सब कुछ इन्फ्लुएंस सब कुछ है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई काम नहीं आता है, सारे सहारे डूब जाते हैं, उसमें एक ही सहारा बचता है, वो भगवान के नाम का सहारा है। और वो हृदय से जब हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, यस मैं डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरे पास इतना इन्फ्लुएंस है, मेरे पास बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, जब चाहे लोग तैयार है मेरे को मदद करने के लिए, फिर भी मेरा सहारा एक ही है, जो मुझे भगवान, जो भगवान है वो मुझे बचा सकता है, बाकी सारे सहारे कब टूट जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। अब सहारा हो भी हमारा कोई, तो वो हमारे पहले मर गया और बाद में आप बच गए तो आपको कौन बचाएगा? होता है ना, बच्चों के मामा मर जाते ना पहले, कि नहीं मरते, बच्चा 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 ही अभी तक, माता पिता मर गए उसके, सहारा था, अच्छा सहारा था, लेकिन चला गया समय के बहाव में, बह गया वो। इसलिए हृदय से असहाय हो जाओ, जब हृदय से आप अपने आप को असहाय मानते हो और भगवान का सहारा लेते हो, तब भगवान आपको सहारा देते हैं। और द्रौपदी कभी ना पहले पति को पुकारा, फिर विष्णुदेव को पुकारा, फिर द्रोण को पुकारा, फिर उसको पुकारा, फिर उसको पुकारा, कोई सहारा नहीं दिया, फिर अपने दांतों में पल्लू रखा कि मैं मेरे दांत से अपनी इज्जत बचाऊंगी, तब पता चला बाप रे इसमें इसमें क्या होगा कि 10,000 1,000 हाथी वाला बल वाला आदमी खींच रहा है, वो दांत क्या बचाएंगे मेरे उसको? तब जाकर पुकारा हाथ छोड़ के, हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, तब तुरंत भगवान आए, तब तक नहीं आए वो। जब तक आपको लगता है कोई सहारा बचा है और करेगा सहारा, तब तक नहीं आते वो। तो सहारा होना और सहारा नहीं होना ये मन की बात है, आपको लगता है कि हाँ ये सहारा है मेरे, तब तक नहीं आएंगे वो। आपको जब लगेगा हृदय से कि कोई सहारा नहीं है, आप ही एक सहारा हो, तो तुरंत आएंगे वो एक्सक्लूसिव। तो ये सहारा चाहिए आपको तो राधा रानी का एजेंसी में नाम दर्ज करो अपना, वो तुरंत आपका नाम देंगे उधर, वो पहला सहारा आपको मिलेगा। जो बालक बनता है ना, बालक एकदम असहाय हो जाता है ना, सबसे पहला सहारा उसको मिलता है संकट में। आप मन से और आत्मा से बालक बनो, अपना सारा हैंग छोड़ दो कि मैं ऐसे ही हूँ, वैसा हूँ, ये शक्ति है मेरी, ये मेरी उम्र है, इतनी पावर है, सब भूल जाओ और एक आत्मा के सर पर भगवान का बालक बनो और भगवान को पुकारो बालक की तरह, तब भगवान आपको सहारा देंगे। सारा ढोंग छोड़ दो, सारा नाटक छोड़ दो, सारा चीटिंग छोड़ दो आप, और एक बालक बनो भगवान के सामने, फिर राधा रानी आकर आपको ले जाएगी और भगवान को सुपुर्द करेगी। और राधा रानी दिया हुआ जो वस्तु है भगवान नकार नहीं सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और राधा रानी दिया है इसको, कृपा करो इसके ऊपर, तुरंत कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों को विनती है 9 सितंबर को बड़े दिल से भगवान का नाम पुकारना और राधा रानी को बोलना कि हम आपके हैं, अपना बना लो, अपने गोद में रख लो, हम बड़े असहाय हैं, आपके सहारे जी रहे हैं। जब जितना जी रहे हैं आपके सहारे जीना चाहते हैं, जब मरना का समय आएगा तो भी आपके सहारे रहेंगे, तो फिर आपको बचाएगी। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद सबका।